इशिका तरुण के साथ उसके घर पहुंच चुकी थी। वो घर डीसेंट सा था, ना ज्यादा बड़ा और ना ही ज्यादा छोटा, पर बनाया मॉडर्न तरीके से गया था। वो घर तरुण का नहीं था, ईशानी के पेरेंट्स ने उसे शादी में गिफ्ट किया था। घर के अंदर आते ही इशिका कन्फ्यूजन से इधर उधर देखने लगी। तभी रूही ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, चलिए मम्मा, हम अपने कमरे में चलते हैं। इशिका उसका हाथ पकड़कर उसके पीछे पीछे जाने लगी। ईशानी रूही के कमरे में ही रहती थी। ये देखकर इशिका ने राहत की सांस ली। इशिका ने अपना सामान रखा और फिर वहीं पर बैठ गई। उसे आए हुए 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि इशिका को बाहर हल्का शोर सुनाई दिया। उसने रूही को वहीं छोड़ा और बाहर गई तो उसके सामने एक लगभग 23 साल की लड़की खड़ी हुई थी। उसका गेरुआ रंग था और कंधे तक के गोल्डन ब्राउन बाल थे। उसने एक डिज़ाइनर ब्रांडेड 1-पीस वाइट ड्रेस पहना था। इशिका ने उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में कहा, ये लड़की ज़रूर तरुण की गर्लफ्रेंड होगी, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रही है? ईशानी को ये सब देखकर बहुत तकलीफ़ होती होगी। इशिका को मन ही मन ईशानी के लिए बुरा लग रहा था। वो वहाँ खड़ी उस लड़की को देख रही थी। इशिका को लगा कि वो लड़की तरुण की गर्लफ्रेंड रश्मि है, लेकिन उस लड़की को देखते ही माया ने गुस्से में कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था। ईशानी अब तुमसे कोई दोस्ती नहीं रखना चाहती है। उसने तुम्हें खुद से मैसेज करके मिलने तक से मना किया था और तुम मुँह उछाकर यहाँ तक चली आई। कैसी लड़की हो तुम युविका? माया की बातों से इशिका समझ गई थी कि वो ईशानी की दोस्त है, लेकिन ईशानी युविका से बात क्यों नहीं कर रही थी ये उसे समझ नहीं आया। इशिका के लिए सिचुएशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो रही थी। ना वो किसी को जानती थी और ना ही किसी से पूछ सकती थी। माया के बाद तरुण ने युविका से कहा, लिसन मिस चौधरी, मुझे आपका बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं है। आप मेरे और ईशानी के रिश्ते में आग लगाना बंद करेंगी? युविका ने उन्हें देखकर सर झटका और फिर ईशानी की तरफ देखते हुए बोली, कैसी लड़की हो तुम? अपने पति और इस सास की बातों में आकर अपनी इकलौती दोस्त से बात तक करना बंद कर दिया। तुम अच्छे से जानती हो कि मैं भड़का नहीं रही हूँ। वो 2 कौड़ी की लड़की तुम्हारी ही ऑफिस में काम करती है और तुम्हारे घर को तोड़ने की कोशिश कर रही है। तुम कब तक ऐसे चुपचाप बैठी रहोगी? इशिका को इतना तो समझ आ गया था कि युविका ईशानी की सच्ची दोस्त है और वो उसे इन सब से निकलना चाहती थी। इससे पहले कि माया और तरुण मिलकर युविका को वहां से निकालते, इशिका आगे आई और उसने युविका का हाथ पकड़कर कहा, मुझे इससे अकेले में बात करनी है। युविका के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि इतने दिनों में पहली बार ईशानी ने उससे बात करने के लिए हाँ कही थी। इशिका युविका को अंदर लेकर जाती, उससे पहले माया जल्दी से वहां आ गई। उसने युविका का हाथ पकड़कर उसे दूसरी तरफ खींचते हुए कहा, बस बहुत हो गया, मैंने कहा निकलो यहाँ से। याद है ना, आखिरी बार ईशानी ने तुम्हें खुद कहा था कि वो तुमसे दोस्ती नहीं रखना चाहती है। कैसी अजीब और ढीठ लड़की हो तुम, बार बार इससे बात करने के लिए चली आती हो। युविका जानती थी कि माया और तरुण उसे इतनी आसानी से बात नहीं करने देंगे, इसलिए उसने इशिका को कॉल करने का इशारा किया और फिर वहां से चली गई। युविका के जाते ही तरुण ने इशिका से कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो, इस लड़की से बात मत करना, ये तुम्हें भड़काना चाहती है। याद है ना पिछली बार क्या हुआ था? इसकी वजह से हमारी कंपनी को इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिलते मिलते रह गया, सिर्फ इस वजह से क्योंकि इसे मैं पसंद नहीं हूँ। इशिका ने तरुण से कोई भी बहस करना जरूरी नहीं समझा। उसने हाँ में सिर हिलाकर कहा, मैं भी बस उससे यही कहना चाहती थी कि यहाँ बार बार ना आए, मैं काफ़ी थक गई हूँ और मुझे आराम की ज़रूरत है। इशिका की बात सुनकर तरुण को राहत महसूस हुई। वो अंदर जाने को ही थी तभी माया ने पीछे से कहा, ज़्यादा देर तक मत सोना, मुझे भूख लगी है, हम सबके लिए खाना बनाना है और कुछ ढंग का बना लेना। पिछली बार तुम्हारा खाना खाकर मेरे पेट में दर्द होने लगा था, इतने सालों में अभी तक तुमने ठीक से खाना बनाना नहीं सीखा। इशिका ने माया की बातों को अनसुना किया और कमरे के अंदर आ गई। उसने रूही को सुलाया और फिर जल्दी से अपना मोबाइल निकाला। उसके पास ईशानी का मोबाइल था। इशिका ने जल्दी से युविका का नंबर देखना शुरू कर दिया। ईशानी के मोबाइल में युविका का नंबर मौजूद ज़रूर था, लेकिन उसने युविका को ब्लॉक कर रखा था। इशिका ने उसे अनब्लॉक करते ही युविका के मैसेज आने लगे। वो जल्दी जल्दी लिख रही थी, ईशानी, मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हारा और रूही का बुरा नहीं चाहती हूँ। ना जाने तुम्हें ये क्यों लगता है कि तरुण के साथ तुम सेफ हो, वो आदमी बहुत घटिया है। तुम्हें अच्छे से पता है उसका दूसरी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है, फिर भी तुम इस बात को नज़रअंदाज कैसे कर सकती हो? तुम इस आदमी से भले ही सच्चा प्यार करती हो, लेकिन ये तुम्हारी नफरत के भी काबिल नहीं है। तुम जानती हो, मैंने उसकी गर्लफ्रेंड को हॉस्पिटल में एक गायनिक के पास देखा था। मैंने सुना था कि वो प्रेग्नेंट है, प्लीज उसे तलाक दे दो। युविका के इतने सारे मैसेज देखने के बाद इशिका ने उसे जवाब में लिखा, मैं भी उसे तलाक देना चाहती हूँ, लेकिन ये इतनी आसानी से नहीं मानेगा, क्या तुम मेरी मदद करोगी? वहीं दूसरी तरफ ईशानी का मैसेज देखकर युविका ने राहत की सांस ली। उसने मुस्कुराते हुए जवाब में लिखा, मैं हमेशा तुम्हारी हेल्प करूंगी, तुम्हें पहले भी कहा था, लेकिन तुमने ही उसकी बातों में आकर मुझे ब्लॉक कर दिया था। मुझे उसके लिए माफ करना, हम कल मिलते हैं, मुझे बताओ कि मैं बाहर कैसे निकल सकती हूँ, ईशिका ने जवाब में लिखा। रूही को स्कूल छोड़ने के बहाने तुम आ सकती हो, मैं तुम्हें उसी के स्कूल में मिलूंगी, कल बात करते हैं, युविका ने जवाब दिया और फिर अपना मोबाइल साइड में रख दिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, चलो तुम्हें समझ तो आया कि उस इस घटिया इंसान से पीछा छुड़ाना ही सही है। वहीं युविका को मैसेज भेजने के बाद ईशिका ने थोड़ी देर आराम किया और फिर किचन में खाना बनाने के लिए चली गई। ईशानी को खाना बनाना नहीं आता था, पर ईशिका इस काम में एक्सपर्ट थी। तरुण आते ही बाहर चला गया था। डाइनिंग टेबल पर माया, रूही और ईशिका ही मौजूद थी। माया ने जब उसके हाथ का बना हुआ खाना खाया तो उसने ईशिका की तरफ देखकर हैरानी से कहा, अजीब बात है, तुमने इतना अच्छा खाना बनाना कैसे सीखा? हम पिछले एक हफ्ते पहले ही गोवा गए थे, उससे पहले तुमने इतना खराब खाना बनाया था कि हमें अपना प्लान एक दिन के लिए पोस्टपोन करना पड़ा। तरुण और मेरा दोनों का ही पेट खराब हो गया था। हाँ, जब मैं पिछले 4 दिनों तक गोवा से बाहर गई थी तब मैंने कुकिंग क्लासेस ली थी, ईशिका ने धीरे से जवाब दिया। चलो तुमने कुछ तो अच्छा किया, माया ने सिर हिलाकर कहा और फिर मजे से खाना खाने लगी। वहीं दूसरी तरफ अरमान और केशव दोपहर को डाइनिंग टेबल पर लंच कर रहे थे। उनकी माँ की फैमिली आउटिंग के लिए गई थी और फिलहाल वो दोनों ही वहाँ पर थे। केशव ने खाना खाते हुए अरमान से पूछा, कुछ पता किया उस कंपनी का? मैंने तुम्हें उन्हें डील भेजने के लिए कहा था। हाँ, मैंने उनके पास एक प्रोजेक्ट भेजा है और ये शर्त भी रखी है कि उनकी पत्नी को इस मीटिंग में होना जरूरी है। वैसे भी कंपनी उसी लड़की के नाम है, अरमान ने जवाब दिया। ठीक है, फिर कुछ भी करके उसका ब्लड सैंपल या सलाइवा का सैंपल ले लेना ताकि हम DNA टेस्ट करवा सके। मुझे लगता है कि तुम्हारे बड़े चाचू और डैड को इस बारे में बता देना चाहिए ताकि वो DNA के लिए तैयार हो जाएं, केशव ने आगे कहा, जिसे सुनकर अरमान उसकी तरफ घूर कर देखने लगा। अरमान ने सिर हिलाकर कहा, आप बार बार पापा और बड़े चाचू के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? DNA सैंपल आपसे मैच क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मेरा कभी किसी औरत के साथ इस तरह का रिलेशन नहीं रहा है, केशव ने सख्ती से कहा।
याद है ना आपको, मिसेज राजवंश राधिका सिंघानिया की बेटी है। क्या लगता है आपको, राधिका सिंघानिया का मेरे डैड और बड़े चाचू के साथ किसी तरह का अफेयर हो सकता है? अरमान ने हल्के गुस्से में पूछा। इस बार केशव चुप हो गया था। उसने मन ही मन बड़बड़ाकर कहा, राधिका का उनके साथ अफेयर नहीं हो सकता, लेकिन हम दोनों के बीच ऐसा कुछ हुआ होता तो मुझे पता होता। राधिका ऐसी औरत नहीं है जो इस तरह की चीज़ को किसी से छुपाए, और अगर वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी तो उससे मुझसे दूर जाने की क्या ज़रूरत थी? कौन सा मैं उससे शादी नहीं करने वाला था? वो अच्छे से जानती है मैं तो उससे प्यार करता था। केशव के दिल में हजारों सवाल थे जिनका जवाब सिर्फ और सिर्फ राधिका के पास था। राधिका का ख्याल आते ही केशव एक बार फिर से परेशान हो गया। केशव के चेहरे पर परेशानी के भाव देखकर अरमान ने कहा, ठीक है, इस बात का बाद में पता लगा लेंगे, लेकिन अगर वो लड़की मिसेज राजवंश है तो उस फैमिली में क्या कर रही है? उसे जाने देते हैं। अगर वो अभिमन्यु की पत्नी है तो अभिमन्यु को इस बारे में पता होना चाहिए। जैसे ही अभिमन्यु का जिक्र आया, केशव के दिमाग में कुछ स्ट्राइक हुआ, लेकिन उसने अरमान को कुछ नहीं बताया। केशव ने अरमान की तरफ देखकर कहा, मेरा खाना हो गया है और मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। रुकिए चाचू, आपने ठीक से कुछ खाया ही नहीं है, अगर यही चलता रहा तो आप अपनी हेल्थ खराब कर लेंगे, अरमान ने केशव को रोकने की कोशिश की। केशव ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और फिर वो गाड़ी में जाकर बैठ गए। केशव ने ड्राइवर को भी बाहर निकलने का इशारा कर दिया। वो खुद ही ड्राइव करके जाने वाले थे। इसका मतलब तुम जानते हो कि तुम्हारी पत्नी जिंदा है, इसी वजह से तुम दिल्ली आए हो, अभिमन्यु राजवंश। वर्मा बिजनेस करने के नाम पर अभिमन्यु राजवंश ना तो पहले किसी के आगे झुका था और ना ही अब झुकने वाला है, केशव ने खुद से कहा। इस वक्त उनकी गाड़ी अभिमन्यु के घर की तरफ जा रही थी, क्योंकि उन्हें अभिमन्यु से सच जानना था। फिलहाल के लिए इतना ही। क्या लगता है कि अभिमन्यु केशव को सच बताएगा या नहीं? अगले पार्ट पर मिलते हैं। पढ़कर कॉमेंट और रेटिंग दे दीजिएगा।